ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत आसियान के मजबूत होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना।
प्रोफेसर सिंह, जैसा कि भारत के आसियान के जो संबंध है वो ऐतिहासिक रूप से भी सांस्कृतिक रूप से भी काफी प्रगाढ़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे श्रोताओं को इस बारे में जानकारी दें कि आसियान जो देश है वो किस तरह के देशों का समूह है और भारत के साथ मौजूदा संदर्भ में उसके किस तरह के संबंध हैं।
भारत का जो ऐतिहासिक रिश्ता है इस पूरे क्षेत्र के साथ वो बहुत ही खास तौर पे सांस्कृतिक रिश्ता है। व्यापारिक रिश्ता भी था पुराने समय से ही इतिहास में, पर आजादी के बाद की बात करें तो शुरू में तो क्योंकि इन देशों को पश्चिमी देशों के साथ देखा जाता था, इसलिए भारत निर्गुणता सम्मेलन में शामिल था, थोड़ा दूरी उस वक्त मेंटेन करता रहा। पर 90 के दशक में, खासकर 70 के दशक से जापान में और जापान के नेतृत्व में इन सभी दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उनमें बहुत आर्थिक वृद्धि दर बहुत बढ़ा और बदलाव आया। और 90 के दशक में जब भारत ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को खोला और बदलाव लाने की कोशिश की तो भारत ने इन दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उस वक्त जुड़ना बिल्कुल सही समझा। उसका कुछ हद तक कारण ये भी था कि आपके उत्तर में चीन था और पश्चिम में पाकिस्तान था, दोनों तरफ मुश्किलें थी, तो विदेश नीति में और खासकर आर्थिक व्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये दक्षिण पूर्व के जो उस वक्त 6 देश थे, अब तो 10 हो गए आसियान में, उनसे जुड़ने की शुरुआत 90 के दशक से हुई। और ठीक उसी तरह से, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे सांस्कृतिक नजरिए से इतिहास में संबंध अच्छे थे और ये सभी भी लोकतांत्रिक देश हैं, तो उनकी तरफ से भी भारत का जो स्वागत था वो लगातार नजर आता है और शुरू से था, तो तालमेल दोनों तरफ से एक तरह से बहुत अच्छा हुआ। और उसमें आखिरी बात ये जोड़ देना चाहूंगा कि हाल ही में जब चीन प्रशांत भू राजनीति की पूरी बहस छिड़ी तो उसमें भी आसियान का और भारत का जो नजरिया है कि किस तरह पूरे क्षेत्र में संतुलन, सुरक्षा, समृद्धि होनी चाहिए, उस पर भी इन दोनों की सोच बिल्कुल मिलती है आपस में। इसलिए लगातार जो आपस में हिस्सेदारी है, साझेदारी है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। लुक ईस्ट से हम एक्ट ईस्ट में पहुंचे हैं, तो उसी का एक पहलू है कि जो सालाना इंडिया आसियान समिट मीटिंग होती है उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, तो उसी मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री गए थे और वहां उन्होंने न केवल सामूहिक तौर पर सबसे बात की बल्कि एक एक करके भी कई विदेश मंत्रियों से उन्होंने बैठक की और किस तरह से रिश्तों को और आगे सुदृढ़ बनाएं और बढ़ाएं उसको अलग अलग क्षेत्रों में, इस पर पूरी विस्तृत रूप से बातचीत हुई।
प्रोफेसर सिंह, और जैसा कि आपने उल्लेख किया कि विदेश मंत्रियों की जो बैठक हो रही है आसियान के देशों की और भारत के विदेश मंत्री की, वो इस समय लाओस में बैठक चल रही है, और अगर मैं उल्लेख करूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले वर्ष जकार्ता गए थे, वहां पर उन्होंने एक 12 सूत्री एक योजना की बात की थी जिस पर क्रियान्वयन करने की जरूरत है, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो 12 सूत्री योजना है ये क्या है और भारत ने किस संदर्भ में इन सारी योजनाओं को आसियान देशों के सामने रखा है?
बिल्कुल आपने सही बताया कि 2018 में भारत ने एक इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव पहले लाए थे और उसके अंतर्गत 7 ऐसे क्षेत्र बताए गए थे कि जिनमें आपस में हिस्सेदारी बढ़ेगी और फिर ये कार्यक्रम उसमें आया। तो सब मिलाकर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा कि ये रिश्ता जो आसियान देशों के साथ है वो डायनेमिक है और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि उसमें लगातार अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने दोनों तरफ से हिस्सेदारी बनाई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो पहले हम जिसको लुक ईस्ट कहते थे, जिसको ज्यादातर हम आर्थिक हिस्सेदारी के नजरिए से आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते थे, उसमें अब सामरिक और रक्षा सुरक्षा को लेकर और संस्कृति को लेकर, लोगों का आपस में तालमेल बढ़ाने को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी आगे और कैसे बढ़ रही है, उसको और तेजी से कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार बातचीत हुई है। और इस वर्ष में जैसा विदेश मंत्री ने कहा कि ये 10वीं वर्षगांठ होगी इस बार नवम्बर में, जब प्रधानमंत्री ने, को याद होगा, म्यांमार में एक 9वें जो ईस्ट एशिया समिट का जो मीटिंग था उस वक्त, उसमें भारत के प्रधानमंत्री पहली बार गए थे, तो उन्होंने उस वक्त लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट में अपनी जो नीति है उसको बदलने की सोच है वो सामने रखी थी, उसका आज इस बार 10वां वर्षगांठ है। तो मुझे लगता है उस परिप्रेक्ष्य में भी एक तरह से समूचे जो आपस में रिश्ते हैं उनको कहां तक हम लेकर आए हैं और किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं, और खासकर अब ये पूरा जो हिंद प्रशांत सागर की भू राजनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में भारत और आसियान किस तरह से वहां संतुलन और समृद्धि बनाने में योगदान दे सकते हैं। तो इस सब को लेकर मुझे लगता है कि एक नया अध्याय शुरू करने की भी इसमें बात हो रही है। अब
प्रोफेसर सिंह, जैसे आपने जिक्र किया इंडो पैसिफिक का, हिंद प्रशांत क्षेत्र का, तो जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या आसियान से उसका किस तरह का तालमेल, किस तरह का संबंध है, और ये पूरा जो भूभाग है और पूरा जो क्षेत्र है वो किस तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है?
सबसे पहले तो ये कि दुनिया में व्यापार जो है वो पुराने जमाने में केवल जो बहुत ही खास या महंगी चीजें होती थी केवल उनका व्यापार होता था, पर धीरे धीरे जब आपने देखा कि ये शिपिंग पॉसिबल हुआ 19वीं शताब्दी के बाद, तो उसमें वैल्यू के अलावा वॉल्यूम में भी व्यापार होना शुरू हुआ। तो बहुत ज्यादातर व्यापार अब समुद्र के रास्ते से होता है, 95% या उससे भी ज्यादा व्यापार जो वॉल्यूम के नजरिए से देखें, वैल्यू के नजरिए से नहीं, तो वो समुद्र के तरीके से होता है। तो जो पूरा हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है इसमें लगातार वृद्धि आई है पिछले 3 या 4 दशकों में, और यहाँ के देशों का आर्थिक वृद्धि दर बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, तो ये व्यापार में बदलाव आने से निवेश भी हुआ है। तो उसके चलते ये पहले जो सुरक्षा के नजरिए से हिंद महासागर को और प्रशांत महासागर को अलग अलग क्षेत्र मानते थे, अब व्यापार और निवेश के नजरिए से इसको एक ही बड़ा क्षेत्र मानते हैं, इसलिए उनको जोड़कर देखा जाएगा। जब जोड़कर देखा गया तो उसमें लगा कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है जो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है, और आसियान अभी तक ये पूरे क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में है, और खासकर 90 के दशक से जितनी भी बातचीत करने के नए मंच बने हैं, जो 2005 में ईस्ट एशिया समिट जैसे मैंने कहा बना था, उससे पहले आसियान रीजनल फोरम था, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे इंडिया आसियान मीटिंग्स होती हैं, इस तरह से जापान आसियान, चाइना आसियान मीटिंग्स होती हैं। तो आसियान क्योंकि एक केंद्र बिंदु रहा है पूरी इस क्षेत्र की आपस में बातचीत करने के लिए, और बहुत से देश दूसरे भी आज भी कहते हैं कि आसियान आज हिंद प्रशांत की भू राजनीति में जो बदलाव आ रहा है उसमें भी आसियान जो है वो ड्राइविंग सीट पर जो केंद्र बिंदु बना रहना चाहिए, क्योंकि वहां कोशिश ये होती है कि जो जटिल मुद्दे हैं उनको बातचीत से उनको सुलझाया जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये सोच भारत की और आसियान की बिल्कुल मिलती है, और इसी के चलते आप देखेंगे तालमेल बहुत तेजी से आगे बढ़ा है।
जी प्रोफेसर सिंह, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं, जैसे कि जो दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है जिसे हम सार कहते हैं, जिसमें भारत बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, तो जब सार की बात करते हैं और फिर दक्षिण पूर्व आसियान के देशों का जो समूह है इसकी बात करते हैं, तो इनमें आपस में भी किसी तरह का कोई तालमेल, कोई संबंध है?
हाँ, तालमेल होना चाहिए था ये कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं उनका आपस में भी तालमेल होना चाहिए। पर आपने देखा कि करीब 8 वर्ष से अब ये जो दक्षिण एशिया का संगठन है जिसको सार्क कहते हैं, उसकी कम से कम राष्ट्र नेताओं की जो शिखर वार्ता होती है वो बंद हो चुकी है। बाकी सब संस्थान उसके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सार्क बंद हो गया है, पर शिखर सम्मेलन जो होता है वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण भारत और पाकिस्तान में जो तनाव है आपस में वो उसका मुख्य कारण है। हालांकि दूसरे बहुत देशों ने भी ये इस बात को भारत का साथ दिया कि ये पाकिस्तान में शिखर सम्मेलन नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा भारत का जो पूरे क्षेत्र के साथ, चाहे वो दक्षिण एशिया का हो या पूरे प्रशांत सागर का हो या आसियान देशों से हो, वो लगातार हमारा जो साझेदारी है वो बढ़ती रही है। और इस क्षेत्र में आप देखें दक्षिण एशिया में तो एक BBIN करके है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, 4 देशों का एक गुट है आपस में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर खास ध्यान देता है। उसके अलावा ये बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने देश हैं उनकी कम्युनिटी को बिम्स्टेक कहते हैं, तो बे ऑफ बंगाल की एक कम्युनिटी है। भारत का आसियान के साथ रिश्ते हैं। उसके बाद भारत फारिस की बात करता है, यहाँ रशिया के व्लादिवोस्तोक तक भारत जाना चाहता है। आपने सुना होगा हाल ही में कि भारत व्लादिवोस्तोक और चेन्नई का एक मैरिटाइम कॉरिडोर की बात कर रहा है
जी।
तो पूरे ईस्ट में या पूरे दक्षिण एशिया में भारत लगातार जुड़ा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि दक्षिण एशिया का जो सार्क संगठन है उसका क्योंकि शिखर वार्ताएं नहीं हो पा रही हैं, इसलिए जो आसियान से दो संगठनों का तालमेल हो सकता था वो शायद नहीं हो पा रहा है उतना, पर भारत का इन सब देशों के साथ, इन सभी संगठनों के साथ लगातार तालमेल हो रहा है, चाहे वो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो। भारत की जो एक तरह से उभरती हुई छवि है वो भारत को सभी संगठनों से जुड़ने के लिए एक तरह से इम्पेल भी करती है और दूसरी तरफ से हमारा वेलकम भी लगातार होता रहता है।
जी प्रोफेसर सिंह, अगर हम मुक्त व्यापार की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, तो आसियान के देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार को लेके किस तरह का संबंध है?
आसियान के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आप शायद कहना चाह रहे हैं एक उससे भी बड़ा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो 16 देशों का होना था, जिसमें 10 आसियान के देश थे और 6 दूसरे देश जैसे चीन, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 6 देश और जुड़ जाते। तो उसमें भारत नहीं जुड़ पाया, उसके कारण है बिल्कुल मुख्य तौर पर 2 या 3 कारण ये कह सकते हैं कि पहले तो उन 15 देशों में 16वां देश भारत को होना था जो नहीं हुआ, उन 15 देशों में 11 देशों का व्यापार है वो एक तरफा व्यापार बनता जा रहा है कि भारत आयात तो करता है पर उतना निर्यात नहीं कर पाता, उसके अलग अलग कारण हैं। और उसके अलावा कम्पेटिटिवनेस की जो बात है, एक तरह से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से सब्सिडीज मिलती हैं, वहां अलग अलग देशों में अलग अलग सब्सिडीज मिलती हैं। तो भारत का खासकर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का पूरा एक क्षेत्र है उसकी कम्पेटिटिवनेस पे खराब असर ना पड़े, जो ढांचा बन रहा था उस वक्त आरसीईपी का उसमें भारत को लगा कि ये जो भारत के 2 बड़े कंसर्न हैं, एक तो ट्रेड डेफिसिट को लेकर और दूसरा हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को लेकर, शायद उन पर ध्यान नहीं दिया गया। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि भारत के पास जो कौशल है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो स्किल्ड मैन पावर हमारे यहाँ है, उसको भी तो मार्केट मिलनी चाहिए, इन देशों को अपनी जो मार्केट है वो खोलनी चाहिए। यदि वो वहां से अपनी चीजें हम निर्यात करना चाहते हैं तो भारत जो स्किल्ड मैन पावर है वो भी निर्यात कर सकता है, उस पर भी सहमति नहीं बन पाई थी। तो उसके कारण आप देखें भारत उसमें नहीं जुड़ पाया, हालांकि आज भी आरसीईपी का ये रवैया है कि भारत के लिए दरवाजे खुले हैं, पर आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी किसी तरह की चुनौती या मुश्किल सामने आई हो।
जी प्रोफेसर सिंह, जब हम आसियान के साथ भारत के संबंधों की बात करते हैं तो वो सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो संबंध है, उसके अलावा जो हम कहते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मतलब हमारी जनता का, हमारे लोगों का, भारत के लोगों का और इन तमाम देशों के जो लोग हैं उनके बीच में आपसी बातचीत, आपसी आदान प्रदान की जिक्र कर रहा हूं। ऐसे में एक समस्या हाल में ही हमें देखने को मिली है कि बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गए या किसी तरह से ले जाए गए और वहां उनको इस तरह के ऑड कामों में लगाया गया और काफी बड़ी समस्या भारतीयों के सामने आई और भारत की सरकार ने बाद में इसमें हस्तक्षेप करके काफी भारतीयों को छुड़ा के वहां से स्वदेश वापसी की। ये जो पूरी समस्या है और इसका क्या निदान है?
बड़ी संख्या में भारतीय जो है वो विदेशों में रहते हैं, यात्रा करते हैं या रोजगार ढूंढने जाते हैं। मध्य पूर्व एशिया में आप देखें कि करीब 90 लाख से ऊपर भारतीय हैं। इसी तरह से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री रूस गए थे तो वहां भी ये बात हुई कि भारतीयों को सेना में वहां भर्ती किया गया है, उनको वहां से निकालना होगा। तो जब हम भारतीयों के विदेश में इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने की अक्सर बात करते हैं कि इतने बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मुख्य सीईओ हैं वो भारतीय हैं, उसके साथ भारत की जिम्मेदारी शायद ऐसे नागरिकों की तरफ ज्यादा हो जाती है जो किसी वजह से किसी मुश्किल में है। आपको याद होगा जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो तभी से उन्होंने पूरा ध्यान इस तरफ केंद्रित किया था कि यदि कोई भारतीय कहीं भी मुश्किल में है तो भारत जिम्मेदार है उनको वहां से निकालने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। तो ठीक इसी तरह से जब भारतीय बहुत से देशों में जाते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में भी जाते हैं, वहां कुछ बहुत सफल हो जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में तो प्राचीन काल से ही भारतीय जाते रहे, तो बहुत से जब भारतीय विदेश में जाते हैं तो जाहिर है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी मुश्किल में फंस जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस तरफ आप देखें कि देता नजर आता है आज कि भारतीय नागरिकों को विदेश में ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि भारत उनके साथ खड़ा नहीं है। तो इस क्षेत्र में भी यदि कोई चिंता का विषय होता है भारतीय नागरिकों के लिए तो जाहिर है कि भारत उस पर बात करेगा।
जी प्रोफेसर सिंह, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत आसियान के मजबूत होते संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।